एक साम्राज्य जो हाथों से नहीं बना। रैंडोल्फ डन द्वारा। मनुष्य को परमेश्वर की छवि में एक शाश्वत धर्मी प्राणी बनाया गया था, न कि उसकी सटीक समानता में। उसने, परमेश्वर ने, मनुष्यों के हृदयों में भी अनंत काल स्थापित किया है, फिर भी वे यह नहीं समझ सकते कि परमेश्वर ने आदि से अंत तक क्या किया है। जैसा कि सभोपदेशक के अध्याय 3:13 में कहा गया है, परमेश्वर ने उनके लिए एक स्वर्ग तैयार किया और उन्हें निर्देश दिया कि वे ईडन को बनाए रखें, फल फूले और बढ़े और उसका फल न खाएं, अच्छे और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, क्योंकि ऐसा करने से वे मर जाएंगे। यह अज्ञात है कि वे वहां कितने समय तक रहे, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने पेड़ का फल खा लिया, परिणामस्वरूप भगवान ने उन्हें ईडन से हटा दिया। ऐसा माना जाता है कि यही वह समय था जब आदम और हव्वा जीवन के वृक्ष का फल नहीं खा सकते थे और हमेशा के लिए जीवित रह सकते थे। कई वर्षों के बाद परमेश्वर ने धर्मी इब्राहीम को उस स्थान पर जाने का निर्देश दिया जो उसने उसके और उसके वंशजों के लिए तैयार किया था, जिसमें से एक स्थान दुनिया को आशीर्वाद देगा। इब्राहीम के वंशजों को इब्राहीम से वादा की गई भूमि पर पहुंचने में 400 साल से अधिक समय हो गया था। वहां रहते हुए वे एक मुक्तिदाता की तलाश में थे जो पापों को क्षमा कर सके, यदि उन्होंने उसकी आज्ञा मानी। पवित्र आत्मा के कार्य द्वारा परमेश्वर एकमात्र पाप बलि बनने के लिए मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर रहने आए। यूहन्ना अध्याय 14:3 में दर्ज करता है, यीशु कह रहा है कि वह तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा है, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने पास ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। क्रूस पर चढ़ने से यीशु की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के बाद वह स्वर्ग लौट आए और पेंटेकोस्ट दिवस पर सभी लोगों पर अपनी आत्मा उंडेली, जो कोई भी प्रभु का नाम लेगा वह बच जाएगा, न कि केवल यहूदियों पर। मसीह के प्रेरितों ने खुशखबरी की घोषणा की, पाप की क्षमा और मुक्ति अब सभी मानव जाति के लिए उपलब्ध है, जिन्होंने पाप के लिए मरकर और पानी में विसर्जन द्वारा उनके रक्त में दफन होकर मसीह में अपना विश्वास और आज्ञाकारिता रखी है, जिसे अक्सर बपतिस्मा कहा जाता है। फिर परमेश्वर इन आज्ञाकारी क्षमा किए हुए लोगों को उनकी कब्र से उठाता है और उन्हें ऐसे राज्य में रखता है जो हाथों से नहीं बनाया गया है। आपको अपने उद्धार के लिए परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना चाहिए, न कि दूसरों की व्याख्याओं पर भरोसा करना चाहिए। मत्ती अध्याय 25:31-34 में कहता है, जब मनुष्य का पुत्र आएगा, वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ अपना उत्तराधिकार ग्रहण करो, वह राज्य जो जगत की उत्पत्ति से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। आदम और हव्वा अपने प्यारे पिता और निर्माता से अलग हो गए थे, लेकिन भगवान के पास मनुष्य को उस आदर्श रिश्ते में वापस लाने की एक योजना थी। उत्पत्ति अध्याय 3:15 में परमेश्वर ने धोखेबाज और झूठ के पिता शैतान से कहा, और मैं तेरे और उस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी पर वार करेगा। संकलक की टिप्पणी, अपना सिर कुचलो, यही मसीह के प्रायश्चित बलिदान और पुनरुत्थान ने किया था। इसने क्षमा प्रदान करके अनंत मृत्यु को समाप्त कर दिया। पाप और मृत्यु पर विजय, मनुष्य पर शैतान की पकड़, उन सभी के लिए जो आस्था, विश्वास और बपतिस्मा के माध्यम से मसीह को मृत्यु के लिए बुलाते हैं। उसकी एड़ी पर प्रहार करो, स्त्री की संतान की सूली पर चढ़ाकर यीशु की जान लेने का प्रयास है। टिप्पणी समाप्त करें। बाद में कैन की अस्वीकार्य भेंट के बाद भगवान ने फिर से मनुष्य के विद्रोही कार्यों के परिणामों के बारे में चेतावनी दी, यदि तुम सही काम करते हो तो क्या तुम्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा, लेकिन यदि तुम सही नहीं करते तो पाप तुम्हारे द्वार पर बैठा है, वह चाहता है तुम्हें पाने के लिए, लेकिन तुम्हें इसमें महारत हासिल करनी होगी। उत्पत्ति 4:07 संकलक की टिप्पणी, कैन ने परमेश्वर की चेतावनी नहीं सुनी। उसने अपने भाई हाबिल को मारकर और भी अधिक पाप किया। उसके कार्यों के परिणाम स्वरूप वह एक पथिक या भगोड़ा बन गया। टिप्पणी समाप्त करें। नूह के दिनों में हम पढ़ते हैं, यहोवा ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्य की दुष्टता कितनी बढ़ गई है और उसके मन के विचारों में हर समय बुराई ही बुराई होती है। उत्पत्ति 6:05। संकलक की टिप्पणी, धर्मी नूह और उसके परिवार को छोड़कर परमेश्वर ने पृथ्वी पर सभी लोगों को जल द्वारा नष्ट करके अपने सामने की सभी बुराइयों को दूर कर दिया। टिप्पणी समाप्त करें। परमेश्वर ने इब्राहीम को सदोम और अमोरा के बारे में अपने विचार प्रकट किए और यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा के विरुद्ध चिल्लाहट बहुत बढ़ गई है और उनका पाप बहुत गंभीर है। मैं अब जाकर देखूंगा कि जो चिल्लाहट मुझ तक पहुंची है उसके अनुसार उन्होंने कुछ किया है या नहीं, और यदि नहीं तो मुझे पता चल जाएगा। तब यहोवा ने सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उसने उन नगरों को और सारे मैदान को और नगरों के सब निवासियों को और जो भूमि पर उगे थे सब नाश कर दिया। उत्पत्ति 18:20-21 और 19:24-25। संकलक की टिप्पणी, परमेश्वर ने उनकी पुकार सुनी, जिससे यह संकेत मिलता है कि परमेश्वर पृथ्वी के लोगों के बीच चल रही हर चीज से अवगत है। इस मामले में उसने सदोम और अमोरा को उनके सभी दुष्ट लोगों सहित नष्ट कर दिया। इन घटनाओं से पता चलता है कि भगवान दुष्टता, अवज्ञा या पाप को बर्दाश्त नहीं करते हैं और ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन हमेशा तुरंत नहीं। टिप्पणी समाप्त करें। आदम और हव्वा से लेकर यीशु के विश्वासघाती यहूदा तक पाप उसी तरह प्रबल रहा जैसा आज भी है। पॉल ने पवित्र आत्मा के माध्यम से कहा, सभी ने पाप किया है और भगवान की महिमा से रहित हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का उपहार हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। रोमियो 3:23-23। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जॉन 3:06। प्रभु अपना वादा निभाने में धीमे नहीं हैं, जैसा कि कुछ लोग धीमेपन को समझते हैं। वह तुम्हारे साथ धैर्यवान है, वह नहीं चाहता कि कोई नाश हो बल्कि हर कोई पश्चाताप करे। 2 पत्रस 3:09। परमेश्वर का वादा एक मुक्तिदाता का था जो पापों को क्षमा कर देगा। पुराने नियम में यीशु के संबंध में कई भविष्यवाणियां हैं, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में केवल 25 भविष्यवाणियां करने और इन भविष्यवाणियों के सच होने की क्या संभावनाएं थीं? डॉक्टर हॉले ओ टेलर ने यह उत्तर दिया है, इज़राइल के आने वाले मसीहा के लिए भविष्यवाणी की गई घटनाओं के इन मामलों के संबंध में, यदि प्रत्येक के मामले में सफलता की संभावनाएं समान थीं, तो संभावना है कि सभी घटनाएं एक में ही पूरी होंगी। व्यक्ति 33 मिलियन में से एक से अधिक होगा। अब ईसा मसीह के बारे में इन भविष्यवाणियों पर एक नज़र डालने से पता चलता है कि उनमें से सभी के पास सफलता की एक समान संभावना नहीं है, क्योंकि कुछ मामलों में यह अत्यधिक असंभव है कि यह घटना आधुनिक विज्ञान और ईसाई से घटित हो सकती है। आस्था। आदम और हव्वा की अवज्ञा के बाद परमेश्वर ने शैतान से कहा, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरा सिर कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी पर वार करेगा। जलप्रलय के वर्षों बाद परमेश्वर ने इब्राहीम को कसदियों के उर को छोड़ने और कनान देश में जाने के लिए कहा और कहा, मैं तुम्हें एक महान राष्ट्र बनाऊंगा और तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और पृथ्वी के सभी लोग तुम्हारे द्वारा आशीष पाएंगे। और बाद में परमेश्वर ने इसहाक और याकूब दोनों से यही वादा किया। ईश्वर के उपहार के संबंध में कई भविष्यवाणियां हैं, जैसे दानियल ने राजा नबूकदनेस्सर के सोने, चांदी, लोहे और मिट्टी की मूर्ति के सपने की व्याख्या करते हुए कहा, और उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का भगवान एक राज्य स्थापित करेगा जो कभी नष्ट नहीं होगा। दानियेल 2:44। यशायाह ने कहा, हे दाऊद के घराने, अब सुनो। क्या मनुष्यों के धैर्य को परखना काफी नहीं है? क्या तुम मेरे परमेश्वर के धैर्य को भी परखोगे? इस कारण यहोवा आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा कि कुवारी गर्भवती होगी और वह एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। यशायाह 7:13-14। परमेश्वर ने स्वर्गदूत गैब्रियल को गलील के एक शहर नाजरेथ में एक कुंवारी लड़की के पास भेजा, जिसका विवाह दाऊद के वंशज जोसेफ नामक व्यक्ति से करने का वचन दिया गया था। कुंवारी का नाम मरियम था। लूका 1:26-35। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और परमप्रधान की शक्ति तुम पर छाया करेगी, इसलिए जन्म लेने वाला पवित्र व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा, कुवारी मरियम गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और वे उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। मत्ती 1:23। यीशु के जन्म से पहले परमेश्वर ने मरियम और जोसेफ को घोषणा की थी कि उसे परमप्रधान का पुत्र कहा जाएगा। लूका 1:32। भगवान ने जानबूझकर खुद को अपने दिव्य स्वभाव से खाली कर लिया, स्वर्ग छोड़ दिया, देह धारण किया और अपने बनाए प्राणियों के बीच रहने लगे। उसकी मां मरियम की शादी यूसुफ से करने की प्रतिज्ञा की गई थी, लेकिन उनके एक साथ आने से पहले वह पवित्र आत्मा के माध्यम से गर्भवती पाई गई। चूंकि उसका पति यूसुफ एक धर्मी व्यक्ति था और उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उसे चुपचाप तलाक देने का मन बनाया। परंतु जब वह इस पर विचार कर रहा था तो प्रभु का एक दूत उसे स्वप्न में दिखाई दिया और कहा, यूसुफ, दाऊद के पुत्र, मरियम को अपनी पत्नी के रूप में अपने घर ले जाने से मत डरो, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र की ओर से है। आत्मा, वह एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो कुछ यहोवा ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो, कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और वे उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। जिस वातावरण में यीशु का जन्म हुआ वह एक बंद समाज था, ऐसे लोग जो स्वयं को अन्य सभी लोगों से श्रेष्ठ मानते थे। वे यहूदी थे और उन्हें इब्राहीम की संतान, ईश्वर के चुने हुए लोग होने पर बहुत गर्व था। उन्हें सामरियों से बेहद नफरत थी, क्योंकि वे उन्हें आधी नस्ल के यहूदी मानते थे, जिन्होंने बेबीलोन की कैद की अवधि के दौरान मूसा के कानून को त्याग दिया था। उनकी नफरत इतनी अधिक थी कि वे सामरियों की भूमि में कदम रखने से बचने के लिए अपने रास्ते से हट जाते थे। रोमन कब्जाधारी अलग नहीं थे और कोई भी यहूदी जो उन कब्जा करने वालों से जुड़ा था वह पापी था, उदाहरण के लिए मैथ्यू कर संग्रहकर्ता। वे उच्चतम स्तर तक विधिवादी भी थे। परमेश्वर के वादों को अर्जित करने के लिए उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि वे कानून के अक्षरशः को पूरा करें, जरूरी नहीं कि इरादे को पूरा करें। उदाहरण के लिए मूसा ने उनसे दशमांश देने और दसवां हिस्सा देने की मांग की, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने दसवां हिस्सा दिया, लेकिन इससे अधिक नहीं। उन्होंने दसवां हिस्सा देने के लिए पौधों के बीज गिने और केवल दसवां हिस्सा दिया। रोम को यहूदियों से एक मील तक सैनिकों का बोझ उठाने की आवश्यकता थी, इसलिए यहूदियों ने यह सुनिश्चित करने के लिए मार्कर लगा दिए कि वे आगे न बढ़े। याद रखें, यीशु ने कहा था कि यदि कोई तुम्हें एक मील जाने के लिए मजबूर करता है उसके साथ दो मील चलो। इस संस्कृति में मसीहा अभिषिक्त व्यक्ति ईसा मसीह आए। यहूदियों का मानना था कि जब मसीहा आएगा तो वह इसराइल के सांसारिक राज्य को सत्ता और सम्मान का ईश्वर प्रदत्त अधिकार बहाल करेगा। उनका मसीहा यहूदियों का राजा होगा और दाऊद की तरह शासन करेगा। ईश ने कहा, जिस पिता ने मुझे भेजा है उसने आप ही मेरे विषय में गवाही दी है। तूने कभी उसका शब्द नहीं सुना, न उसका रूप देखा और न उसका वचन तुम में बसा, क्योंकि उसके भेजे हुए की तुम प्रतीति नहीं करते। तुम पवित्र शास्त्र का मन लगाकर अध्ययन करते हो, क्योंकि तुम सोचते हो कि उसके द्वारा तुम्हें अनंत जीवन मिलता है। ये वे पवित्र शास्त्र हैं जो मेरे विषय में गवाही देते हैं। प्रेरित पत्रस ने कबूल किया, ईसाई मसीह का नाम धारण करते हैं क्योंकि मसीह उनका भगवान, शिक्षक, मार्गदर्शक, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, आदर्श, उच्च पुजारी, आशा, पाप के लिए बलिदान और बहुत कुछ है। हमारे विश्वास की चट्टानी ठोस नीम पीटर की स्वीकारोक्ति की सच्चाई है, आप मसीह हैं, जीवित ईश्वर के पुत्र यीशु वास्तविक है और बाइबल सत्य है। यीशु के बारे में जो कुछ भी जानना आवश्यक है वह सब बाइबल में पाया जाता है। संपूर्ण मानव इतिहास उसके चारों ओर घूमता है। यीशु मानव नाटक का केंद्रीय पात्र है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि दुनिया का इतिहास दो समय अवधियों में विभाजित है, ईसा से पहले और ईसा के बाद। प्रेरित यूहन्ना ने लिखा, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वह शुरुआत में परमेश्वर के साथ थे। उसके बिना कुछ भी नहीं बन सकता, उसके बिना कुछ भी नहीं बना जो बना है। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। प्रकाश अंधेरे में चमकता है, परंतु अंधेरा उसे समझ नहीं पाया है। वहां एक मनुष्य आया जो परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ था, उसका नाम जॉन था। वह उस प्रकाश के विषय में गवाही देने के लिए गवाह के रूप में आया, ताकि उसके द्वारा सभी लोग विश्वास कर सकें। वह प्रकाश नहीं था, वह केवल प्रकाश के साक्षी के रूप में आया था। सच्ची रोशनी जो हर इंसान को रोशनी देती है दुनिया में आ रही थी। वह जगत में था और यद्यपि जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ तो भी जगत ने उसे न पहचाना। वह उसके पास आया जो उसका अपना था, परंतु उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। फिर भी जितनों ने उसे ग्रहण किया, उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते थे, उसने परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया, ऐसे बच्चे जो न तो प्राकृतिक वंश से पैदा हुए, न मानवीय निर्णय से या पति की इच्छा से, बल्कि परमेश्वर से पैदा हुए। यह सब इसलिए किया गया कि जिसने भी उसे प्राप्त किया, जो उसके नाम पर विश्वास करता था, उसने उसे ईश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया, बच्चे जो प्राकृतिक वंश से पैदा नहीं हुए, नहीं मानवीय निर्णय या पति की इच्छा से, बल्कि ईश्वर से पैदा हुए। शब्द देहधारी हुआ और उसने हमारे बीच अपना वास बनाया। हमने उसकी महिमा देखी है, एक और एकमात्र की महिमा, जो अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर पिता की ओर से आई है। जॉन द बैप्टाइजर ने घोषणा की। यूहन्ना चिल्लाकर कहता है, यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था कि जो मेरे बाद आता है वह मुझसे आगे निकल गया, क्योंकि वह मुझसे पहले था। उनकी कृपा की परिपूर्णता से हम सभी को एक के बाद एक आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, क्योंकि व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई, अनुग्रह और सत्य यीशु मसीह के द्वारा आए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, परंतु एकमात्र परमेश्वर ने जो पिता के निकट है उसे प्रकट किया है। अगले दिन यूहन्ना जॉन बैप्टिस्ट ने यीशु को अपनी ओर आते देखा और कहा, देख, परमेश्वर का मेमना जो संसार के पापों को दूर ले जाता है। रोमन गवर्नर पीलातुस ने यीशु को निर्दोष घोषित कर दिया। तब पीलातुस महल के भीतर वापस गया और यीशु को बुलाया और उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? क्या यह आपका अपना विचार है, यीशु ने पूछा, या दूसरों ने आपसे मेरे बारे में बात की? क्या मैं यहूदी हूं, पिलातुस ने उत्तर दिया। तेरी प्रजा और महायाजकों ने ही तुझे मेरे हाथ सौंप दिया। यह तुमने क्या किया है, यीशु ने कहा, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि ऐसा होता तो मेरे सेवक यहूदियों द्वारा मेरी गिरफ्तारी को रोकने के लिए लड़ते, लेकिन अब मेरा राज्य दूसरी जगह है। तो फिर आप राजा हैं, पिलातुस ने कहा। यीशु ने उत्तर दिया, तुम ठीक कह रहे हो कि मैं राजा हूं। वास्तव में इसी कारण से मेरा जन्म हुआ है और इसीलिए मैं सत्य की गवाही देने के लिए संसार में आया हूं। सत्य के पक्ष में हर कोई मेरी बात सुनता है। सच क्या है? पिलातुस ने पूछा। यहूदियों ने जोर दिया, हमारे पास एक कानून है और उस कानून के अनुसार उसे मरना होगा, क्योंकि उसने भगवान का पुत्र होने का दावा किया था। जब पिलातुस ने यह सुना तो वह और भी डर गया और महल के भीतर लौट गया। आप कहां से आए हैं? उसने यीशु से पूछा, परंतु यीशु ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। क्या आप मुझसे बात करने से इनकार करते हैं? पिलातुस ने कहा। क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि मेरे पास तुम्हें आजाद करने या सूली पर चढ़ाने की शक्ति है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हें ऊपर से यह न दिया गया होता तो तुम्हारा मुझ पर कोई अधिकार नहीं होता। इसलिए जिसने मुझे तुम्हारे हाथ पकड़वाया वह बड़े पाप का दोषी है। यीशु ने प्रार्थना की। यीशु ने स्वर्ग की ओर देखा और प्रार्थना की, पिता, समय आ गया है। अपने पुत्र की महिमा करो कि तुम्हारा पुत्र तुम्हारी महिमा करे, क्योंकि तूने उसे सब मनुष्यों पर अधिकार दिया कि जिन सभों को तूने उसे दिया है उन सभों को वह अनंत जीवन दे। अब अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने तुझे पृथ्वी पर महिमा दिलाई है, और अब पिता अपनी उपस्थिति में मुझे उसी महिमा से महिमामंडित करो जो जगत के आरंभ से पहले मेरी तुम्हारे साथ थी। यूहन्ना 17:1-5। खोजे ने फिलिप से कहा और उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। थैलस, एक सामरी मूल का इतिहासकार जो 52 के आसपास रोम में रहता था और काम करता था, को दूसरी शताब्दी के उत्तरार्ध के ईसाई कालक्रमकार जूलियस अफ्रीकन्स ने उद्धृत किया था। थैलस अपने इतिहास की तीसरी पुस्तक में इस अंधेरे को सूर्य के ग्रहण के रूप में दूर करता है। अफ्रीकन्स ने रिपोर्ट पर अपनी आपत्ति जताते हुए तर्क दिया कि पूर्णिमा के दौरान सूर्य का ग्रहण नहीं हो सकता है जैसा कि यीशु के समय हुआ था। फसह के समय मृत्यु हो गई। थैलस के संदर्भ का बल यह है कि यीशु की मृत्यु की परिस्थितियों के बारे में इंपीरियल शहर में पहली शताब्दी के मध्य में ही चर्चा की गई थी। यीशु के क्रूस पर चढ़ने का तथ्य काफी हद तक ज्ञात रहा होगा उस समय तक, इस हद तक कि थैलस जैसे अविश्वासियों ने अंधेरे के मामले को एक प्राकृतिक घटना के रूप में समझाना आवश्यक समझा। विडंबना यह है कि थैलस के प्रयासों को यीशु के लिए और विश्वसनीयता के लिए ऐतिहासिक प्रमाण की मुख्य धारा में बदल दिया गया है। मार्क की मृत्यु के समय अंधकार का विवरण मैथ्यू कहता है, उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया था और बैठकर उस पर निगरानी रखते रहे। छठे घंटे से लेकर 9वें घंटे तक सारी धरती पर अंधेरा छा गया। मरकुस ने इसे इस प्रकार कहा, छठे घंटे तक सारी भूमि पर अंधकार छा गया और 9वें घंटे तक छा गया। ब्रिटिश संग्रहालय की एक पांडुलिपि में मारा बारसेरापियन नाम के एक सीरियाई व्यक्ति द्वारा अपने बेटे को भेजे गए पत्र का पाठ संरक्षित है। पिता ने सुकरात, पाइथागोरस जैसे बुद्धिमान लोगों और यहूदियों के बुद्धिमान राजा को सताने की मूर्खता का चित्रण किया जिसका संदर्भ यीशु को दर्शाता है। सुकरात को मौत की सजा देने से एथेनियाई लोगों को क्या लाभ हुआ? उनके अपराध के दंड के रूप में अकाल और महामारी उन पर आ पड़ी। पाइथागोरस को जलाने से समोस के लोगों को क्या लाभ हुआ? एक क्षण में उनकी भूमि रेत से ढक गई। अपने राजा को मार डालने से यहूदियों को क्या लाभ हुआ? इसके बाद ही उनका राज्य समाप्त कर दिया गया। भगवान ने इन तीन बुद्धिमान व्यक्तियों का उचित बदला लिया एथेनियाई लोग भूख से मर गए, सैमियन समुद्र से अभिभूत थे, यहूदी बर्बाद हो गए और अपनी भूमि से निकाल दिए गए, पूरी तरह से बिखरे हुए रहते हैं। नहीं, बुद्धिमान राजा अच्छे के लिए मरा, वह उस शिक्षा में जीवित रहा जो उसने दी थी। कॉर्नेलियस टैसिटस एलगभग 50 ई से 100 ई तक रहने वाले रोमन इतिहासकार ने नीरो की आग के संबंध में लिखा। परिणामस्वरूप रिपोर्ट से छुटकारा पाने के लिए नीरो ने अपराध बोध को समाप्त कर दिया और अपने घृणित कार्यों के लिए नफरत करने वाले एक वर्ग, जिसे लोग ईसाई कहते थे, को सबसे अधिक यातनाएं दीं। क्राइस्टस, जिनसे इस नाम की उत्पत्ति हुई थी, को इस दौरान अत्यधिक दंड भुगतना पड़ा। हमारे अभियोजकों में से एक, पोंटियस पिलातुस के हाथों टिबेरियस का शासन। प्लिनियस सेकुंडस 112 में एक रोमन गवर्नर ने सम्राट ट्रोजन को लिखा कि ईसाइयों को एक निश्चित दिन पर रोशनी होने से पहले मिलने की आदत है, जब वे ईसा मसीह को ईश्वर के रूप में गाते थे और कोई भी दुष्ट कार्य न करने की गंभीर शपथ लेते थे, जिसके बाद अलग होना और फिर भोजन करने के लिए फिर से मिलना, लेकिन सामान्य प्रकार का भोजन करना उनका रिवाज था। सेउटोनियस एहेड्रियन के शासनकाल के दौरान इंपीरियल हाउस के एनालिस्ट और अदालत के अधिकारी ने क्लॉडियस के जीवन में 120 ईस्वी के बारे में लिखा था। चूंकि क्रेस्टस के उकसाने पर यहूदी लगातार गड़बड़ी कर रहे थे, क्लॉडियस ने उन्हें रोम से निकाल दिया। एडवर्ड सी भार्टन कहते हैं, इस उद्धरण की प्रसिद्धि का कारण इस तथ्य के कारण है कि ल्यूक ने लगभग 60 साल पहले इसी घटना को प्रेरित पॉल के एक्विला नाम के एक ईसाई यहूदी जोड़े के साथ संबंध बनाने के कारण के रूप में दर्ज किया था। प्रिसिला। फिर ऐतिहासिक संदर्भ में ईसा मसीह का उल्लेख बाइबल से परे साहित्य में देखा गया है। जोसेफस नामक एक यहूदी इतिहासकार ने बनाया एक दिलचस्प अवलोकन। इसी समय यीशु का उदय हुआ। यदि हमें उसे मनुष्य कहना चाहिए तो वह एक बुद्धिमान मनुष्य था, क्योंकि वह अद्भुत कर्म करने वाला था और उन मनुष्यों का शिक्षक था जो सत्य को प्रसन्नता से ग्रहण करते थे। उसने बहुत से यहूदियों और बहुत से यूनानियों को भी जीत लिया। यह मनुष्य मसीहा था। और जब पिलातुस ने हमारे ही नेताओं के कहने पर उसे क्रूस पर चढ़ाया, तो जो लोग पहले से उससे प्रेम रखते थे, वे नहीं रुके, क्योंकि वह तीसरे दिन भविष्यद्वक्ताओं के रूप में फिर से जीवित होकर उनके सामने प्रकट हुआ, भविष्यवाणी की थी और उसके बारे में कई अन्य अद्भुत बातें कही थीं, और अब भी ईसाइयों की जाति, जिसका नाम उसके नाम पर रखा गया, अभी तक खत्म नहीं हुई है। एफ एफ ब्रूस इसे बहुत स्पष्ट रूप से सारांशित करता है। प्रारंभिक यहूदी और गैर यहूदी लेखकों के साक्ष्य के बारे में चाहे जो भी सोचा जाए, यह कम से कम उन लोगों के लिए स्थापित करता है जो ईसाई लेखन की गवाही से इनकार करते हैं, स्वयं यीशु का ऐतिहासिक चरित्र। कुछ लेखक मसीह मिथक की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन वे ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर ऐसा नहीं करते हैं। ईसा मसीह की ऐतिहासिकता एक निष्पक्ष इतिहासकार के लिए जूलियस सीजर की ऐतिहासिकता जितनी ही स्वयंसिद्ध, स्वयंस्पष्ट है। यह नहीं है इतिहासकार जो मसीह मिथक सिद्धांतों का प्रचार करते हैं। बाइबल में ईश्वर के उपहार के बारे में कई शब्द और कार्य दर्ज हैं। जब यीशु को जॉर्डन नदी में जॉन द्वारा बपतिस्मा दिया गया, विसर्जित किया गया, तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर की तरह उस पर उतरा, और स्वर्ग से एक आवाज आई जिसने कहा, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। शैतान ने उससे कहा, यदि क्योंकि या तब से तू परमेश्वर का पुत्र है, तो इस पत्थर को रोटी बनने की आज्ञा दे। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यहूदिया के जंगल में उपदेश देता और कहता था, पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही है जिसके विषय में यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था, जंगल में किसी की आवाज सुनाई दे रही है, प्रभु के लिए रास्ता तैयार करो, उसके लिए सीधे रास्ते बनाओ। यूहन्ना ने यीशु को अपनी ओर आते देखा और कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। जैसे ही यीशु ने बपतिस्मा लिया, वह पानी से बाहर आ गया। उसी क्षण स्वर्ग खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर की तरह उतरते और अपने ऊपर प्रकाश करते देखा। और आकाशवाणी हुई, यह मेरा पुत्र है जिससे मैं प्रेम रखता हूँ, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। प्रलोभक शैतान उसके पास आया और कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। सामरी स्त्री ने कहा, मैं जानती हूँ कि मसीहा, जिसे मसीह कहा जाता है, आ रहा है। जब वह आएगा तो हमें सब कुछ समझा देगा। तब यीशु ने घोषणा की, मैं जो तुमसे बात करता हूँ वह हूँ। कई वर्षों तक यीशु ने एक ऐसे व्यक्ति के रूप में शिक्षा दी जिसके पास चमत्कारों, संकेतों और चमत्कारों के द्वारा अपने संदेश की पुष्टि करने का अधिकार था, जैसे अंधों को देखना, बहरों को सुनना, लंगड़ों को चलना और मृतकों को फिर से जीवित करना। यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा, लेकिन तुम्हारे बारे में क्या? उन्होंने पूछा, आप क्या कहते हैं मैं कौन हूँ? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि यह बात किसी मनुष्य ने नहीं, परंतु मेरे स्वर्गीय पिता ने तुझ पर प्रकट की है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पतरस हो, और इस चट्टान पर मैं अपना गिरजा बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर विजय न पा सकेंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। संकलक की टिप्पणी, इस चट्टान पर यह तथ्य कि यीशु परमेश्वर के पुत्र थे और हैं, मेरे चर्च की नींव है। पाताल लोक मृतकों की आत्माओं का अस्थाई निवास है। मृत्यु ने मसीह के चर्च पर विजय प्राप्त नहीं की। टिप्पणी समाप्त करें। वह उस समय के बारे में अधिक विशिष्ट था जब उसका राज्य आएगा। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो लोग यहाँ खड़े हैं वे परमेश्वर के राज्य को शक्ति के साथ आते हुए देखने से पहले मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे। मरकुस 9:1। संकलक की टिप्पणी, मसीह अपने कुछ श्रोताओं के जीवनकाल के दौरान जानबूझकर अपने जीवन को पापबलि, एक बलिदान के रूप में देकर रोमन सरकार को उसे क्रूस पर चढ़ाने की अनुमति देकर मनुष्य के पाप का प्रायश्चित करने के लिए अपने चर्च की स्थापना कर रहे होंगे। उसके भौतिक शरीर की चोरी को रोकने के लिए उन्होंने उसे पहरेदारों के साथ एक सुरक्षित कब्र में दफनाया। लेकिन परमेश्वर पिता ने उसके शरीर के सड़ने से पहले तीसरे दिन मृत्यु और कब्र पर विजय प्राप्त करते हुए उसे जीवित कर दिया। टिप्पणी समाप्त करें। लगभग 9वें घंटे में यीशु ने ऊंचे स्वर में चिल्लाकर कहा, एलोई एलोई लामा सबाक्तनी, जिसका अर्थ है, मेरे भगवान, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? जब वहां खड़े लोगों में से कुछ ने यह सुना तो उन्होंने कहा, वह एलियाह को बुला रहा है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और एक स्पंज ले आया। उसने उसे दाखमधु के सिरके से भर दिया, एक छड़ी पर रखा और यीशु को पीने के लिए दिया। बाकी लोगों ने कहा, अब इसे अकेला छोड़ दो, देखते हैं एलियाह उसे बचाने आता है या नहीं। और जब यीशु ने फिर ऊंचे शब्द से चिल्लाकर प्राण त्याग दिए, उसके चेले फिर घर में थे और थोमा उनके साथ था। हालांकि दरवाजे बंद थे, यीशु आया और उनके बीच खड़ा हो गया और कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां रख, मेरे हाथ देखो, अपना हाथ बढ़ाओ और मेरी तरफ डाल दो, संदेह करना बंद करो और विश्वास करो। थोमा ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। लगभग 40 दिनों के बाद उनकी स्वर्ग में वापसी को प्रेरितों ने देखा, जिन्होंने तब उनके सुलह के संदेश की घोषणा की। पवित्र आत्मा को सुसमाचार का प्रचार करने और उसे रिकॉर्ड करने में मार्गदर्शन करने के लिए भेजा गया था, जो मुक्ति के लिए ईश्वर की शक्ति है। प्रारंभ में कई यहूदियों और बाद में कई अन्य जातियों ने यीशु मसीह को भगवान के रूप में स्वीकार किया। यहूदिया, गलील और सामरिया में कई गवाहों ने, जो उस समय रहते थे और सिखाया था, उनके जीवन में वापस आने, उनके पुनरुत्थान और स्वर्ग में उनकी वापसी, मसीह के स्वर्गारोहण की गवाही दी। मसीह अपने चर्च की नींव है। नाजरेत के यीशु ने ईश्वर के स्वभाव में होने के नाते ईश्वर के साथ समानता को समझने योग्य चीज नहीं माना, लेकिन एक सेवक के स्वभाव को अपनाते हुए मानव समानता में बने हुए खुद को कुछ भी नहीं बनाया। पॉल ने तीमुथियुस को लिखा कि जो नींव रखी गई है, जो यीशु मसीह है, उसके अलावा कोई भी व्यक्ति किसी और नींव की स्थापना नहीं कर सकता है, और इफिसियों को प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर बनाया गया है। मसीह यीशु स्वयं आधारशिला है। यह यीशु मसीह नासरत के नाम से है, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, परंतु परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया कि यह मनुष्य तुम्हारे सामने चंगा होकर खड़ा है। वह यीशु वह पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने अस्वीकार कर दिया था, जो आधारशिला बन गया है। मुक्ति किसी और से नहीं मिलती, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। संकलक की टिप्पणी, ईश्वर पुत्र ने मनुष्यों के बीच रहने और अपने द्वारा बनाए गए प्राणियों द्वारा प्रलोभनों, परीक्षणों और अस्वीकृति का सामना करने के लिए यीशु के रूप में एक भौतिक शरीर बनना चुना। टिप्पणी समाप्त करें। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके दिल की आंखें प्रबुद्ध हो जाएं, ताकि आप जान सकें कि उनके बुलावे की आशा क्या है, संतों में उनकी विरासत की महिमा का खजाना क्या है और उनकी शक्ति की उत्कृष्ट महानता क्या है। हम जो विश्वास करते हैं, ये उसकी शक्ति की क्रिया के अनुसार हैं, जो उसने मसीह में तब लाया जब उसने उसे मृतकों में से उठाया और उसे सभी शासन और अधिकार और शक्ति और प्रभुत्व से बहुत ऊपर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिने हाथ पर बैठाया, और हर एक नाम जो रखा जाता है, न केवल इस युग में बल्कि आने वाले युग में भी अनंत युग में। और उसने सब कुछ उसके चरणों के अधीन कर दिया और उसे चर्च के लिए सभी चीजों पर मुखिया के रूप में दे दिया, जो कि उसका शरीर है, उसकी पूर्णता जो सब कुछ भरता है। यीशु के स्वर्गारोहण के बाद प्रेरित यीशु की आज्ञा के अनुसार यरूशलेम लौट आए। बहुत से यहूदी यरूशलेम में इकट्ठे हुए थे, क्योंकि यह पिंतेकुस्त का दिन था, और जब पिंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। और एकाएक स्वर्ग से ऐसा शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फैलती हुई दिखाई दी, और वे उनमें से हर एक पर ठहर गईं, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा उन्हें बोलने की शक्ति देता था, उसी प्रकार अन्य भाषा बोलने लगे। तेज हवा की आवाज ने एक बड़ी भीड़ को इकट्ठे प्रेरितों के पास ला दिया। पीटर और अन्य प्रेरितों ने उन्हें यह याद दिलाने का अवसर लिया कि उन्होंने और उनके धार्मिक नेताओं ने क्या किया था। उन्होंने कहा, इसलिए सभी इसराइल को इस बात का आश्वासन दिया जाए, भगवान ने इस यीशु को, जिसे आपने क्रूस पर चढ़ाया था, भगवान और मसीह दोनों बनाया है। जब लोगों ने यह सुना तो वे हृदय पर टूट पड़े और पतरस और दूसरे प्रेरितों से कहने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें। पतरस ने उत्तर दिया, तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम पर पश्चाताप और बपतिस्मा ले, और तुम्हें पवित्र आत्मा का उपहार मिलेगा। यह वादा तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए और उन सभी के लिए है, दूर हैं, सभी लोग, उन सभी के लिए जिन्हें प्रभु हमारा परमेश्वर बुलाएगा। संकलक की टिप्पणी, आर पश्चाताप मात्र एक भावना नहीं है, इसमें मनोदशाओं और भावनाओं की अनिश्चितता नहीं है। यह आत्मा के मौसम में साधारण परिवर्तन नहीं है। यह बुद्धि के फोकस का एक विशिष्ट परिवर्तन है। यह अपने साथ इच्छा शक्ति की गति लेकर चलता है। संक्षेप में, यह मनुष्य के अस्तित्व की जमीन पर एक क्रांति है। टिप्पणी समाप्त करें। संकलक की टिप्पणी, बपतिस्मा ग्रीक शब्द बैप्टिजो से अनुवादित है, जिसका अर्थ है डूबना, डुबाना, नीचे गिरना या विसर्जित होना। बैप्टिजो को ग्रीक शब्दों से भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। रेंटिजो, जिसका अर्थ है छिड़कना, या ग्रीक शब्द चेओ से, जिसका अर्थ है डालना ऊपर। टिप्पणी समाप्त करें। यह यीशु वह पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने अस्वीकार कर दिया था, जो आधारशिला बन गया है और किसी के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। पेंटेकोस्ट दिवस पर कई यहूदियों ने अपनी पापी स्थिति को महसूस करते हुए मसीह की मृत्यु के समय पानी में डूबे रहकर ईश्वर से उन्हें माफ करने का आह्वान करते हुए ईसा मसीह पर भरोसा किया, जिसके बाद ईश्वर ने उन्हें पानी में दफनाने से उठाया और उन्हें अपने शिष्यों में शामिल कर लिया, जिससे उनकी स्थापना हुई। क्षमा किए गए पापियों का शरीर उसका चर्च। तो फिर जिन लोगों ने उसका वचन ग्रहण किया था, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उस दिन वहां लगभग 3,000 प्राणी जुड़ गए और वे प्रेरितों को शिक्षा देने, संगति करने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में निरंतर लगे रहे। और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में रहते और घर घर रोटी तोड़ते, आनंद और मन की सीधाई से परमेश्वर की स्तुति करते और सब लोगों पर अनुग्रह करते हुए एक साथ भोजन करते थे। और जो उद्धार पा रहे थे, प्रभु उनकी गिनती दिन प्रतिदिन बढ़ाता जा रहा था। जेम्स ने मसीह में उन लोगों को संबोधित करते हुए कहा, धन्य है वह आदमी जो परीक्षण के दौरान दृढ़ रहता है, क्योंकि जब वह परीक्षण में खरा उतरेगा तो उसे जीवन का मुकुट मिलेगा, जिसका वादा भगवान ने उनसे किया है जो उससे प्यार करते हैं। जब परीक्षा हो तो किसी को यह नहीं कहना चाहिए, परमेश्वर मेरी परीक्षा करता है, क्योंकि न तो बुराई से परमेश्वर की परीक्षा होती है और न वह किसी की परीक्षा करता है, परंतु हर एक अपनी ही बुरी अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर इच्छा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को जन्म देता है। संकलक की टिप्पणी, यह जानते हुए कि पाप के परिणाम होते हैं, आपको और मुझे क्षमा करने, छुटकारा पाने, मिलमिलाप करने और ईश्वर के साथ एक धार्मिक रिश्ते में वापस लाने की आवश्यकता है। जिन लोगों को क्षमा किया जाता है, उन्हें हाथों से नहीं बनाए गए राज्य में डाल दिया जाता है। ईश्वर के साथ इस सामंजस्य के बाद व्यक्ति को मसीह के संदेश, बाइबल का अध्ययन करके ईश्वर की समानता में विकसित होना चाहिए। टिप्पणी समाप्त करें। भगवान अपने वादे को पूरा करने में धीमे नहीं हैं, जैसा कि कुछ लोग धीमेपन को मानते हैं, लेकिन आपके प्रति धैर्यवान हैं और नहीं चाहते कि कोई भी नष्ट हो जाए, बल्कि यह कि सभी को पश्चाताप तक पहुंचना चाहिए। ईश्वरीय दुहक पश्चाताप लाता है जो मोक्ष की ओर ले जाता है, और कोई पछतावा नहीं छोड़ता, लेकिन सांसारिक दुहक मृत्यु लाता है, क्योंकि हम सबको मसीह के न्याय आसन के सामने उपस्थित होना है कि हर एक को अपने शरीर में रहते हुए किए गए कामों का फल मिले, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। क्योंकि जब हम परमेश्वर के बैरी थे तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा उससे मेल हो गया, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के द्वारा हमारा उद्धार क्यों न होगा। न केवल ऐसा है, बल्कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर में आनंद भी मनाते हैं, जिसके द्वारा अब हमारा मिलमिलाप हुआ है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुराना चला गया, नया आ गया। यह सब ईश्वर की ओर से है, जिसने हमें मसीह के माध्यम से अपने साथ मिलमिलाप कराया और हमें मिलमिलाप का मंत्रालय दिया। ईश्वर दुनिया को मसीह में अपने साथ मिला रहा था, न कि मनुष्यों के पापों को उनके विरुद्ध गिन रहा था, और उन्होंने हमें मिलमिलाप का संदेश दिया है। संकलक की टिप्पणी, एक नई रचना क्षमा किए गए पापियों की एक आध्यात्मिक रचना है, जिसे परमेश्वर की सेवा के लिए पुजारी बनाया गया है। पहली रचना भौतिक मनुष्य पृथ्वी के तत्वों से बनी थी। यह नई रचना ईश्वर की कृपा और मनुष्य के विश्वास, विश्वास और आज्ञाकारिता से बनी है। टिप्पणी समाप्त करें। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम मुझ में शांति पाओ। इस दुनिया में आपको समस्याएं तो झेलनी ही होंगी, लेकिन दिल थाम लो, मैंने संसार पर विजय प्राप्त कर ली है। यीशु ने यह कहने के बाद स्वर्ग की ओर देखा और प्रार्थना की, हे पिता, समय आ गया है। अपने पुत्र की महिमा करो कि तुम्हारा पुत्र तुम्हारी महिमा करे, क्योंकि तूने उसे सब मनुष्यों पर अधिकार दिया कि जिन सबों को तूने उसे दिया है उन सबों को वह अनंत जीवन दे। अब अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जाने। चूंकि यीशु परमेश्वर का अनंत जीवन का उपहार है, इस उपहार को स्वीकार करने के लिए किसी को क्या करना चाहिए? पिंतेकुस्त दिवस पर यीशु के स्वर्ग लौटने के 40 दिन बाद पीटर ने इस प्रश्न का उत्तर दिया और आत्मा सभी मनुष्यों पर उंडेला गया। परमेश्वर ने दाऊद से शपथ खाकर वादा किया था कि वह उसके वंशजों में से एक को उसके सिंहासन पर बिठाएगा। आगे क्या था यह देखकर उसने मसीह के पुनरुत्थान के बारे में बात की कि उसे कब्र में नहीं छोड़ा गया था, नहीं उसके शरीर में सड़न देखी गई थी। भगवान ने इस यीशु को पुनर्जीवित किया है और हम सभी इस तथ्य के गवाह हैं। ईश्वर के दाहिने हाथ से सम्मानित, उसने पिता से वादा किया हुआ पवित्र आत्मा प्राप्त किया है और जो कुछ आप अभी देखते और सुनते हैं उसे उंडेल दिया है। इसलिए सब इसराइल, इस बात का निश्चय रखो, परमेश्वर ने इस यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु और मसीह दोनों बनाया है। जब लोगों ने यह सुना तो वे हृदय पर टूट पड़े और पतरस और दूसरे प्रेरितों से कहने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उत्तर दिया, पश्चाताप करो और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले। जिन्होंने उसके संदेश को स्वीकार किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उस दिन उनकी संख्या में लगभग 3,000 लोग जुड़ गए। उन्होंने अपने घरों में रोटी तोड़ी और आनंदित और सच्चे मन से एक साथ खाया और परमेश्वर की स्तुति की और सब लोगों की कृपा का आनंद उठाया। और जो उद्धार पा रहे थे, प्रभु उन्हें प्रतिदिन उनमें मिला देता था। अन्य लोगों के कई रिकॉर्ड किए गए उदाहरण हैं जिन्होंने पाप के लिए मरकर मसीह को स्वीकार किया। मसीह की मृत्यु के बाद उन्हें दफनाया गया, पानी में डुबोया गया, भगवान द्वारा नए आध्यात्मिक प्राणियों के रूप में उठाया गया और मसीह के शरीर में डाल दिया गया और भगवान के साथ संगति में रखा गया। इथियोपियाई खोजे, सामरी, तरसुस का शाऊल, कुर्नेलियुस और फिलिप्पी, इफिसुस, कुरिंथ और रोम के अनेक नगरों के लोग,